नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 15 मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है। मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के 11 और डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 मतदान केंद्रों पर कल पुनर्मतदान होगा। इन केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। आयोग ने कहा है कि इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का निर्णय पर्यवेक्षकों तथा रिटर्निंग अधिकारियों की रिपोर्ट पर लिया गया है। इन मतदान केंद्रों पर बुधवार को विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत कच्चे तेल के विश्व के 5वें सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। सूरत में आज आयोजित 3रे वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऊर्जा संकट के बाद देश ने न केवल अपनी ऊर्जा आपूर्ति में विविधता लाई है, बल्कि सफलतापूर्वक 60% एलपीजी का उत्पादन भी देश के भीतर ही कर रहा है। सरकार ने आज कहा है कि पश्चिम एशिया में बदलती स्थितियों के बीच ऊर्जा आपूर्ति, नववहन अभियान और भारतीय नागरिकों को सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में निरंतरता और आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए सक्रियता से काम किया जा रहा है। तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में एलपीजी की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कार्रवाई जारी है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने की 15 तारीख से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने बताया है कि ये सेवाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तर भारत में यात्रियों, एयरलाइंस और कार्गो ऑपरेटरों के लिए एक नया अवसर प्रदान करेंगी। इंडिगो इस एयरपोर्ट से पहली उड़ान संचालित करेगी, जिससे नियमित यात्री सेवाओं की शुरुआत होगी। इसके बाद जल्द ही अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी अपनी सेवाएं शुरू करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज लेह के जीवत्सल में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर लद्दाख के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और केंद्रीय गृह सचिव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेषों की यह प्रदर्शनी आज से इस माह की 14 तारीख तक लद्दाख में आयोजित की जा रही है। एक रिपोर्ट।
यह पहली बार है कि भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किसी प्रदर्शनी के लिए उनके स्थायी स्थान से दूसरे स्थान पर लाया गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री शाह ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर लद्दाख के लोगों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लद्दाख में इन पवित्र अवशेषों की उपस्थिति याद दिलाती है कि भारत की सभ्यता ने हजारों वर्षों से शांति और सह अस्तित्व का संदेश दिया है। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि यह प्रदर्शनी दुनिया के हर कोने से धार्मिक नेताओं, शोधकर्ताओं, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों को एक मंच पर ला रही है। आम जनता के दर्शन के लिए ये पवित्र अवशेष कल से इस महीने की 10 तारीख तक लेह में रहेंगे और इसके बाद 11 और 12 मई को सांस्कार घाटी में ले जाए जाएंगे। लेह से आकाशवाणी समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय आवश्यक सहायता उत्पाद सूची NLEP पहल के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने चिकित्सा सहायक प्रौद्योगिकियों के लिए कई मानक जारी किए हैं। BIS द्वारा कोहनी बैसाखी, चलने वाली छड़ियां और 3 या अधिक पैरों वाली छड़ियों के लिए मानक प्रकाशित किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि ग्रेट निकोबार परियोजना इस बात का उदाहरण है कि समग्र विकास किस तरह आर्थिक विकास, पारिस्थितिक संरक्षण और सामाजिक समावेश को संतुलित कर सकता है। सरकार ने कहा कि यह परियोजना भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, समुद्री और रक्षा उपस्थिति को मजबूत करने के लिए ग्रेट निकोबार की रणनीतिक स्थिति का लाभ उठा सकती है। झारखंड के 7 वर्षीय बालक ईशांक सिंह ने पाक जलडमरू मध्य को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बनने का रिकॉर्ड बनाया है। ईशांक ने श्रीलंका और भारत के बीच 29 किलोमीटर की दूरी को अपने आयु वर्ग के लिए रिकॉर्ड समय 9 घंटे 50 मिनट में पूरा किया। वहीं IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 226 रन का लक्ष्य दिया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने ताजा समाचार मिलने तक 6 ओवर में बिना किसी नुकसान के 70 रन बना लिए हैं। मौसम विभाग ने कल असम, मेघालय, उपमहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, केरल, माही, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्कल में कल तेज बारिश होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।